बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी प्रभु के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरी आशा यही है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, आपको मालूम होगा कि इन दिनों में हम मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 13 के 23 पद तक देखा था, जिसमें हमने बीज बोने वाले का दृष्टांत देखा। आज हम अपने अध्ययन को उससे आगे बढ़ाते हुए अध्याय 13 उसके 14 पद से आरंभ करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम अपने अध्ययन को आरंभ करें, आइए हम इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयार हैं। प्रभु जी, आप सभी भाई बहनों को बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हम सब आपके वचन को समझ सकें और अपने जीवन में उसे ग्रहण करने पाएं। हम उन श्रोता भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो किसी रीति से दुखी और निराश हैं या बीमार से पीड़ित हैं। प्रभु जी, आप उन पर भी अपनी कृपा कीजिए ताकि वे भी स्वस्थ और भले चंगे होकर अपने जीवन में आपको धन्य कह सकें। आप सभी श्रोता भाई बहनों को आज आशीषित करें ताकि प्रत्येक जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम जंगली बीज का दृष्टांत के बारे में आगे देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय और उसके 24 पद में आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। मित्रों, हमारे प्रभु इस दृष्टांत को उस स्थान से लेते हैं जहां पर उन्होंने पहले वाले दृष्टांत को, जो बीज बोने वाले के बारे में था, छोड़ दिया था। उसने हमें बताया कि जितना बीज बोया गया था उसमें से सिर्फ 1/4 बीज ही अच्छी भूमि पर गिरा और अन्य 3/4 का जो बीज था वो उत्पन्न नहीं किया गया, क्योंकि जिन लोगों ने वचन को सुना उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। दूसरे शब्दों में कहें कि उनका उद्धार नहीं हुआ। जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना उसमें से सिर्फ 1/4 लोगों ने ही उद्धार को प्राप्त किया। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैंने अपने वर्तमान सेवा काल में इस प्रतिशत को इससे भी बहुत कम पाया है। यदि 10 लोगों में से एक व्यक्ति बुलाहट को स्वीकार करता है तो वह सही है, इसलिए कि मैं समझता हूं कि मेरा रन रेट सही है। लेकिन दूसरे मसीह सेवक भी मुझे यही कहानी सुनाते या बताते हैं। एक प्रचलित सेवक ने बताया कि सिर्फ 3% बात ही सत्य होती है। इसलिए आप यहां देखिए कि हमारा रन रेट या बैट करने की क्षमता सही नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस विश्वासियों के लिए जो प्रभु के पास आते हैं। हम सब स्वर्ग के राज्य की स्थिति में हैं, जो हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उसके साथ यही होता है। परंतु अब हम संसार में स्वर्ग राज्य की स्थिति के दूसरे पहलू को देखेंगे। यहाँ पर उस व्यक्ति की तस्वीर है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज को बोया। तब हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 25 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि कौन सो रहा है। जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया। इस बात को याद रखें कि बोने वाला प्रभु है और वह न तो सोता है और न ही ऊंघता है। शैतान शत्रु है और वह जंगली बीज को गेहूं के बीज बोता है। यहाँ पर जंगली बीज झूठी शिक्षा है। इसी प्रकार के बोने के विषय में आजकल बहुत सी चर्चाएं भी हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 26 पद में आगे पढ़ते हैं, पर जब गेहूं में अंकुर निकले और फिर बालें आई तो जंगली घास भी दिखाई दी। जब गेहूं और जंगली घास बढ़ना आरंभ करते हैं तो दोनों के बीच अंतर करना बहुत कठिन होता है। स्पष्ट रूप से कहूं कि बहुत से झूठे और गलत शिक्षाएं देने वाले आरंभ में अच्छे ही लगते हैं। आप इनको 12 और 13 पाठ तक कुछ भी सच्चाई बता सकते हैं, जब तक कि यह वो पाठ होते हैं जिनमें वे अपने गलत सिद्धांतों का परिचय देते हैं। किसी ने एक बार डॉक्टर मैगी से कहा, आप अमुक व्यक्ति की आलोचना मत कीजिए। मैंने उसका प्रचार सुना है और उसने सुसमाचार सुनाया है, यह अच्छी बात है, पर वह सुसमाचार जब कभी भी समय मिलने पर सुनता है, परंतु वह दूसरी बात कहता है जो गलत है। आप यहाँ पर देखें कि वह गेहूं के बीच जंगली घास को बोता है। आप देखेंगे कि बोने वाला जानता है कि इस जंगली बीज के बोने के लिए कौन जिम्मेदार है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय और उसके 27 से 30 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तब दासों ने आकर स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपनी भूमि में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली घास कहाँ से आई? और उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें? परंतु उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली घास बटोरते समय कहीं तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली घास बटोर कर जलाने के लिए उसके गट्ठे बांध लो, परंतु गेहूं को मेरे खलिहान में एकत्रित करो। मित्रों, यह देखने में बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है, जिसकी व्याख्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारे प्रभु कहते हैं, जंगली घास को उखाने की कोशिश मत करो, उन्हें एक साथ बढ़ने दो। जब वे पूर्णता बढ़ जाएंगे तब तुम पहचान लोगे कि कौन गेहूं है और कौन जंगली घास है। किसी ने आकर डॉक्टर मैगी से कहा, पादरी साहब, क्या सोचते हैं कि संसार बेहतर हो रहा है? उसने उत्तर दिया कि मैं सोचता हूं कि यह बेहतर हो रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा, क्या आप सोचते हैं कि संसार बिगड़ता जा रहा है? उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि संसार बिगड़ता जा रहा है। एक तीसरा व्यक्ति, जिसने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को सुना था, कहता है, क्या आप स्वयं को बचाना चाह रहे हैं? सबों को खुश करने की कोशिश करने जैसा नहीं है। ठीक है, और वास्तव में दोनों ही सही हैं। जंगली घास भी बढ़ रहा है और गेहूं भी बढ़ रहा है। संसार बेहतर बनता जा रहा है, गेहूं ऊपर बढ़ता जा रहा है। आज जितनी अधिक बाइबल शिक्षा दी जाती है, इससे पहले कभी भी नहीं दी जाती थी। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज भी बहुत से परमेश्वर के भक्त लोग हैं जो उसके वचन से प्रेम करते हैं और उसकी रक्षा करते हुए उसके लिए लड़ते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, इसका अर्थ है कि गेहूं बढ़ रहा है। जो भी हो, संसार भी बुरा होता जा रहा है और बहुत सी जंगली घास बढ़ रही है। मित्रों, कई वर्षों से मैं एक कलीसिया में इसी उद्देश्य के साथ में प्रवेश किया कि मैं प्रभु की सेवकाई में हूं और मैं घास को साफ करूं, लेकिन उसके विपरीत मुझे ही वहां से साफ कर दिया गया। अर्थात मैंने पाया कि मैं जिसके साथ सेवा में था, मैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सका। इस परिच्छेद से और अन्य परिच्छेदों से यह जानकर कि मेरा काम वचन का प्रचार करना है, धन्यवाद देता हूँ। मैं सब तरफ जाकर जंगली घास को नहीं उखाड़ता हूँ, क्योंकि मैंने पाया कि जब आप जंगली घास को उखाड़ते हैं तो उसके साथ में गेहूं भी उखड़ जाता है। परंतु अब मैं जानता हूँ कि मेरा काम घास उखाड़ना नहीं है, परंतु गेहूं के बीज को बोना है। परमेश्वर के वचन को बोना ही मेरा काम है या मेरी जिम्मेदारी है। मित्रों, इस संसार में गेहूं और जंगली घास दोनों ही बढ़ रहे हैं। यह मसीही जगत में स्वर्ग के राज्य की स्थिति है, जो मसीह के अस्वीकार किए जाने और उसके वापस पृथ्वी पर आकर अपने राज्य को स्थापित करने के मध्यांतर के बीच के समय की बात है। यह मसीह की कलीसिया की तस्वीर या दृश्य नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि यह निश्चित रूप से यह संगठित कलीसिया का चित्र है, वह सच है, परंतु संगठित कलीसिया उसकी कलीसिया नहीं है। उसकी कलीसिया असंख्य अदृश्य संतों के समूह से बनी है। जब मैं यहाँ पर अदृश्य कहता हूँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि वे किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं। वास्तव में मैं इस शब्द अदृश्य को पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पाया है कि बहुत से संत सोचते हैं कि इसका मतलब यह है कि उन्हें रविवार रात को अदृश्य होना है, और सप्ताह के मध्य में भी वास्तव में वे कई बार अदृश्य हो जाते हैं। एक सच्ची कलीसिया एक सच्चे विश्वासी के द्वारा ही बनती है, चाहे कोई भी संप्रदाय की क्यों ना हो। सच्चे विश्वासी वे लोग हैं जिन्होंने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है और उस पर भरोसा करते और उसके वचन से प्रेम करते हैं। यही उनकी वास्तविक परीक्षा भी है। इसलिए आप विचलित मत होइए कि गेहूं और जंगली घास एक साथ बढ़ रहे हैं। एक दिन प्रभु अपना हसिया लगाएंगे और गेहूं और जंगली घास को अलग करेंगे। मैं धन्यवादी हूं कि यह मेरा काम नहीं है, क्योंकि यदि यह मेरा काम होता तो मुझे डर है कि मैं कहीं घास के साथ साथ कुछ गेहूं भी ना उखाड़ दूं। मित्रों, अब हम राई के बीज का दृष्टांत को देखेंगे। यह दृष्टांत एक अलग प्रकार के बीज को प्रस्तुत करता है। तो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय और उसके 31 और 32 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, उसने एक और दृष्टांत देकर उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे एक मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। यह अन्य सब दानों से छोटा होता है, परंतु पूर्णतः बढ़कर बगीचे के सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा वृक्ष बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मित्रों, यह राई के दाने का वृक्ष एक कलीसिया या व्यक्तिगत मसीह का असंभावित प्रतीक है। साधारणतः फल देने वाले वृक्षों को विश्वासियों को चित्रित करने के लिए उपयोग किया गया है। राई एक मसाला है और इसके भोजन का मूल्य नहीं है। यह गेहूं का दाना नहीं है जो पौष्टिक आहार से भरा हो। यह सिर्फ बर्गर और अन्य छोटे खानों के लिए ही अच्छा है। राई का दाना भोजन नहीं है जिसे खाकर आप जीवित रह सकते हैं। मित्रों, राई का दाना बड़े बांज के पेड़ के समान बड़ा नहीं होता है, जैसे कि एक बांज का फल बड़ा करता है। यह एक झाड़ी है जैसे निर्जन क्षेत्र में अच्छी तरह से बढ़ता है। राई का दाना सभी बीजों में सबसे छोटा होता है। कई वर्ष पूर्व एक उदारवाद प्रचारक ने यह खोज की कि राई का दाना सबसे छोटा दाना नहीं है। उसने यह सोचा कि उसने बाइबल में कोई गलती ढूंढ निकाली है। सभी दानों से छोटा होने से हमारे प्रभु का क्या मतलब था? यह सभी दानों में सबसे छोटा था। जो लोग उसके साथ में थे इसके बारे में यही जानते थे। यह मेरा मानना है कि यह सब बीजों या दानों में सबसे छोटा बीज या दाना है। उस वर्ग या उस श्रेणी में जिसके अंतर्गत राई का दाना आता है, उसमें यह बहुत ही छोटा बीज है, परंतु पूर्णतः बढ़कर बगीचे के सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा वृक्ष बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मित्रों, यह छोटा बीज जिसे एक शाख बनना चाहिए था, अच्छा खाद पाकर इतना बढ़ गया कि पक्षी उसमें बसेरा करने लगे। यह दृष्टांत मसीह जगत के बाहरी बढ़ोतरी को दर्शाता है, जबकि खमीर का दृष्टांत मसीह जगत के अंदर की स्थिति को प्रकट करता है। कलीसिया ने संसार को नहीं बदला है, परंतु कलीसिया का संसार में एक अद्भुत प्रभाव है। इसलिए जहां कहीं भी मसीहत पहुंची है, उसे हम मसीही जगत कह सकते हैं। मित्रों, यह दृष्टांत संगठित कलीसिया के बाहरी बढ़ोतरी को प्रकट करता है। कलीसिया और संसार बहुत ही भयानक तरीके से घुल मिल गए हैं। यहाँ पर कलीसिया के एक व्यक्ति में और संसार के व्यक्ति के बीच में एक एकीकरण की वास्तविकता पाई जाती है। हमारे दिनों में दोनों ही एक जैसे कार्य करते हैं और जीवन बिताते हैं। एक मसीही को जगत का नमक होना चाहिए, न कि राई। आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। कई वर्ष पूर्व मैंने एक दूसरे उदारवाद प्रचारक को संदेश देते हुए सुना, जो चिड़ियों को अलग संस्था के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। उसने बैप्टिस्ट, CNI और मेथोडिस्ट के चिड़ियों के बारे में और कलीसिया के कई अन्य समूहों को चिड़िया होने की संज्ञा दी। लेकिन यह सच है कि जो व्याख्या हमारे प्रभु ने की, उस व्याख्या के विपरीत है जिसे प्रभु ने पक्षी के बारे में अपने पहले दृष्टांत में व्याख्या दी थी। हमें इस बात को समझना है कि इस दृष्टांत में पक्षी किसी अच्छी बात के विषय में नहीं बताते हैं, परंतु इसके बदले में वे दुष्टता को प्रस्तुत करते हैं। ये पक्षी वो ही थे जो मार के किनारे गिरे हुए दाने को उठा के ले गए। हमारे प्रभु ने कहा कि ये शत्रु को दर्शाते हैं, जो शैतान है। मित्रों, मुझे डर लगता है कि कहीं हमारा मसीही जगत आज राई का पेड़ तो नहीं है जो बहुत से गंदे पक्षियों के साथ भरा पड़ा है। अब खमीर के दृष्टांत को आगे हम देखते हैं। मित्रों, खमीर का दृष्टांत इस अध्याय का मुख्य दृष्टांत है। तो आइए मैं आपको इसके महत्व को बता दूं या आपको समझने में सहायता करूं। सबसे पहले इस बात को याद रखें कि मतिर्चि सुसमाचार बाइबिल की एक मुख्य पुस्तिका है। दूसरा कि मतिर्चि सुसमाचार 13 अध्याय इस पुस्तक का मुख्य अध्याय है और पद 33 इस अध्याय का विशेष या मुख्य पद है। इसलिए वास्तव में जो हमारे सामने है वह बाइबल के पदों में से एक मुख्य पद है। तो आइए अब हम बाइबल के विशेष शिक्षा पर ध्यान दें। मत्तयि सुसमाचार 13 अध्याय उसके 33 पद को हम पढ़ते हैं। उसने एक और दृष्टांत उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसे एक स्त्री 3 पसेरी आटे में तब तक मिलाती रही जब तक आटा खमीरा न बन गया। मित्रों, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, परंतु आप यहीं पर मत रुकिए। आगे लिखा है उसे देखें, जिसे एक स्त्री 3 पसेरी आटे में तब तक मिलाती रही। खमीर किसको प्रकट करता है? कुछ लोग हैं जो खमीर का अर्थ सुसमाचार बताते हैं, उन्हें इसे और अच्छी तरह से जानना चाहिए। कहीं पर भी खमीर को किसी अच्छे सिद्धांत या नियम के लिए उपयोग नहीं किया गया है। यह हमेशा ही दुष्ट का सिद्धांत या नियम रहा है। बाइबल में शब्द खमीर 98 बार मिलता है और लगभग 75 बार पुराने नियम में और 23 बार नए नियम में मिलता है, और यह हमेशा ही बुरे विचार के साथ लिया गया है। एक महान विद्वान डॉक्टर लाइटफुड ने एक वक्तव्य दिया जिसे रब्बी संबंधी लिखने वाले लेखक खमीर को लगातार दुष्ट के प्रतीक के रूप में उपयोग करते थे। पुराने नियम में जो बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए जाते थे उसमें इसे प्रयोग करने से मनाही थी, और नए नियम में हमारे प्रभु ने कहा है कि फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। हम मत्तयि सुसमाचार 16 अध्याय उसके 6 पद में देख सकते हैं, और पौलुस प्रेरित ने भी बुराई व दुष्टता को खमीर की बात कही है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में हम देख सकते हैं। मित्रों, शास्त्र में दिए गए प्रतीकवाद स्वयं से विरोध नहीं करते हैं, और हमें निश्चय है कि मत्तयि सुसमाचार 13 अध्याय में खमीर को अच्छे विचार के लिए नहीं लिया गया है, अर्थात खमीर सुसमाचार नहीं है। मित्रों, सुसमाचार 3 पसेरी आटे के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हम इसे कैसे जानते हैं? क्योंकि भोजन या आटा गेहूं या अनाज के बीज से ही बनता है, और हमारे प्रभु ने हमें पहले बीज बोने वाले के दृष्टांत में कहा है कि बीज प्रभु के वचन को दर्शाता है। मित्रों, इस बात को याद रखें कि यह दृष्टांत परमेश्वर के वचन का इस पृथ्वी पर क्या होने जा रहा है इसका चित्र है। मसीह को अस्वीकार करने और उसका उत्कर्ष होने के मध्यांतर के बीच के समय में जब वह अपने राज्य को स्थिर करने के लिए वापस आएगा तब इसकी तस्वीर को दर्शाता है। यहाँ पर ध्यान दें कि परमेश्वर के वचन का क्या होता है जो आटे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मैं समझता हूँ कि आप महिलाएं मुझे इसे बोलने के लिए क्षमा करेंगे कि जब एक स्त्री को सिद्धांत के तात्पर्य के लिए शास्त्र में प्रयोग किया गया है तब उसे हमेशा बुराई या दुष्ट के सिद्धांत के लिए ही उपयोग में लाया गया है। वह खमीर लेकर आटे में मिलाती है। यदि खमीर सुसमाचार को दर्शाता है तो वो उसे छिपाती क्यों है? सुसमाचार का प्रचार घर के छत से चिल्लाकर बताना चाहिए और उसे पृथ्वी के छोर तक पहुंचाना चाहिए। यह सच है कि खमीर दुष्ट का एक सिद्धांत है और स्त्री इसे आटे में मिलाती है जो सुसमाचार परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। आज हमारे दिनों में हम इसे निश्चित रूप से देखते हैं कि कोई भी गलत शिक्षा या वाद ऐसा नहीं है जो बाइबल को अनदेखा करती है। मैंने पाया है कि जो लोग शैतान की उपासना करते हैं, दुष्ट आत्माओं की आराधना करते हैं, वे भी बाइबल का प्रयोग करते हैं। हर प्रकार के गलत शिक्षक परमेश्वर के वचन अर्थात आटे में खमीर डालते या मिलाते हैं। मित्रों, खमीर क्या करता है? खमीर एक पदार्थ है जिसे खमीर को संधान उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब इसे रोटी के आटे में डाला जाता है तो वह फूल जाता है और ऊपर उठता है और इसे स्वादिष्ट भी बनाता है, और यही कारण है कि बहुत से लोग गलत शिक्षा में ही उत्साहित होते हैं। जहां तक प्राकृतिक स्वाद की बात है, खमीरी रोटी ऐसी ही है, इसलिए थोड़ा खमीर निश्चय ही इसकी सहायता करता है। कभी कभी लोग घर में बिस्किट बनाते हैं तो वे मैदे में खमीर मिलाते हैं और उसके नाप के अनुसार ओवन में या चूल्हा में गर्म करते हैं और कुछ ऊंचाई तक या फूल कर ऊपर आ जाता है तो उतार लेते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि जब आप आटे को लगातार फूलते हुए देखते हैं या उसे देखते रहते हैं तो क्या होता है? मैं आपको बताता हूं कि वे उसे खराब कर देती है और आप उसे खाना भी पसंद नहीं करेंगे। खमीर दुष्ट का एक सिद्धांत है। यह दृष्टांत कलीसिया में गलत शिक्षा के अनुचित हस्तक्षेप को सिखाता है जो अंत में पूर्णतः स्वधर्म त्याग की ओर ले जाएगा। स्वर्ग का राज खमीर के समान है जिसे एक स्त्री 3 पसेरी आटे में तब तक मिलाती रही जब तक आटा खमीरी न बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मित्रों, हम इसे लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 8 पद में देख सकते हैं। जिस प्रकार से यह प्रश्न यूनानी भाषा में रखा गया है तो यह एक नकारात्मक उत्तर की मांग करता है। दूसरे शब्दों में वह कह रहे हैं कि जब वह पृथ्वी पर लौटेगा तो सारी पृथ्वी पर स्वधर्म त्याग होगा। पौलुस प्रेरित दूसरे तिमुथियों की पत्री उसके 4 अध्याय 2 पद में भी कहते हैं, एक जवान व्यक्ति को लिखते हुए कहते हैं जो सेवकाई के लिए अध्ययन कर रहा था, वह उसे चेतावनी देता है कि ऐसा समय आने वाला है जब वे सही सिद्धांत नहीं सह पाएंगे। मित्रों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 14 से 19 पद में भी हम देख सकते हैं कि कलीसिया के अंतिम और पूर्ण धर्म त्याग को लौदिकिया की कलीसिया में प्रकट किया गया है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 34 और 35 पद में आगे पढ़ते हैं, यीशु ने ये सब बातें भीड़ से दृष्टांतों में कही और वह दृष्टांत के बिना उनसे कुछ भी नहीं कहता था जिससे कि नबी द्वारा जो वचन कहा गया था वह पूरा हो, मैं दृष्टांतों में बोलने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को कहूंगा जो जगत की सृष्टि से गुप्त थी। मित्रों, मैं उन बातों को कहूंगा जो जगत की सृष्टि से गुप्त थी। इस कथन को दृढ़ता से मन में रखिए। हमारे प्रभु हमें एक नए सत्य को दे रहे हैं। जिन बातों को वह इन दृष्टांतों के द्वारा प्रकट कर रहे हैं वे इस प्रकार से पुराने नियम में भी कभी प्रकट नहीं किए गए हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 36 पद में आगे पढ़ते हैं, फिर वह भीड़ को छोड़कर घर आया, तब उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, खेत के जंगली घास का दृष्टांत हमें समझा दे। मित्रों, यीशु ने भीड़ को दूर भेज दिया और अपने शिष्यों को अपने चारों ओर एकत्रित किया। वह उन्हें इस जंगली घास के दृष्टांत को स्पष्ट करने जा रहे हैं। हम इसे पहले ही देख चुके हैं, फिर भी आइए हम इस शास्त्र के कथन को पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 37 से 40 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया, जो अच्छा बीज बोता है वह मनुष्य का पुत्र है। खेत तो संसार है, अच्छे बीज राज्य की संतान है, जंगली बीज दुष्ट की संतान है, और शत्रु जिसने उन्हें बोया वह शैतान है। कटनी इस युग का अंत है और फसल काटने वाले स्वर्गदूत हैं। यह आज के मसीही जगत की परिस्थिति की बिल्कुल सही तस्वीर है। मेरे प्रभु की कोई भी भविष्यवाणी अधूरी नहीं रही या उसी तरह से पूर्ण हुई जितना तक संभव यह हो सकती थी। मित्रों, हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय और उसके 41 पद में आगे पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा जो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारण तथा कुकर्मियों को एकत्रित करेंगे। आप 1000 साल के शासन काल में देखेंगे कि दुष्ट अपने कुरूप सिर को ऊंचा करेगा परंतु उसे नष्ट किया जाएगा। फिर हम आगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 42 और 43 पद में पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, और उन्हें आग के भट्ठे में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। सब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। मित्रों, ये शास्त्र के कठोर शब्द हमारे अद्भुत प्रभु के कोमल होठों से निकले थे। आखिरी के 3 दृष्टांत असाधारण हैं, जिसके अंतर्गत वे कुछ निश्चित और भिन्न दृष्टिकोण से स्वर्ग के राज्य के विषय में आज हमें बताते हैं। तो मित्रों, हमारा यहाँ पर समय समाप्त होता है और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको अवश्य ही इस अध्ययन से आशीष प्राप्त हुआ होगा। यदि आपको आशीष मिला है तो आप हमें अवश्य ही पत्र लिख करके अपने आशीषों को हमें बताएं। यदि आपके पास कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं जो इस कार्यक्रम से संबंधित है तो आप हमें पत्र अवश्य लिखें। प्रभु आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहायता और मदद करे। प्रभु आपको आशीष दे।
कोई दुश्मनी भरपूर शांति रहेगी, न कोई भूख होगी न कोई प्यास होगी न कोई उलझन होगी, न कोई दुख होगा न कोई दुश्मनी भरपूर शांति रहेगी। हमको है यकीन हम जाएंगे वही यीशु रहता है,
श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है, तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कछु ना भरोसा इस जीवन का, करो भजन अब प्रभु यीशु का।
कछु ना भरोसा इस जीवन का, करो भजन अब प्रभु यीशु का।
कछु ना भरोसा इस जीवन का,
बालकपन तो खेल पहेली, जवानी भी सब पापों में